नमस्कार भारत, तारीख 3 जून, दिन बुधवार। मैं हूं विनीत खरे। फीफा अध्यक्ष बनने के 4 दिन बाद सेप प्लैटर का इस्तीफा देने का ऐलान। फोन डाटा इकट्ठा करने की अमेरिकी एजेंसियों की क्षमता हुई सीमित। किसानों के लिए बुरी खबर, सामान्य से 12% कम बारिश होने की आशंका।
सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो तो किसानों पे पड़ेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं मीडिया में देख रहा हूँ वो सबसे ज्यादा उनको इंटरेस्ट है कि इन्फ्लेशन पे क्या होगा।
और ब्रिटेन में महिलाओं के लिए मस्जिद बनाए जाने का विरोध, साथ में अखबारों की सुर्खियां। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा के नव निर्वाचित अध्यक्ष सेप ब्लैटर ने कहा है कि वे अपना पद छोड़ देंगे। बीते सप्ताह ही वे 5वीं बार फीफा अध्यक्ष चुने गए थे। ब्लैटर के ऐलान के घंटों बाद ही अमरीकी मीडिया में आई रिपोर्टों में कहा गया है कि वे भी FBI की जाँच के दायरे में हैं। अमरीकी सेनेट ने सुरक्षा एजेंसियों के आम नागरिकों का फोन डेटा जमा करने के कार्यक्रम को रोकने का फैसला लिया है। सेनेट ने एक नए कानून को पारित कर दिया है जिसके तहत जांच एजेंसियां जासूसी तो कर सकेंगी लेकिन उन पर बंदिशें भी लागू होंगी। एजेंसी को अब अमरीकी नागरिकों के फोन डेटा को हासिल करने के लिए कोर्ट से वारंट लेना होगा। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा है कि वे द USA फ्रीडम एक्ट पर तुरंत हस्ताक्षर कर देंगे। 2001 में हुए हमलों के बाद से लागू चरमपंथ विरोधी कानून की समय सीमा रविवार को समाप्त हो गई थी और अमरीकी सेनेट ने इसकी अवधि नहीं बढ़ाई है। राष्ट्रपति ओबामा ने सेनेट के इस फैसले की आलोचना की है। ओक्लाहोमा के सेनेटर जेम्स लैंगफोर्ड ने नए बिल को पारित होने का ऐलान करते हुए कहा, लैंगफोर्ड कह रहे हैं, क्या कोई सेनेटर वोट देना या अपने वोट को बदलना चाहता है? अगर नहीं तो 67 ने हाँ कहा है और 32 ने ना कहा है। बिल पारित हो गया है। चीन में यांगसी नदी में डूबे जहाज में जिंदा फंसे हो सके यात्रियों की तलाश रात में भी जारी है। करीब 450 सैलानियों को ले जा रहा क्रूज जहाज कल यांगसी नदी में डूब गया था। अधिकारियों के मुताबिक करीब 150 किलोमीटर के इलाके में जारी तलाश अभियान में 4000 पुलिसकर्मी, अग्निशमन दल के कर्मचारी और सैनिक जुटे हुए हैं। द ईस्टर्न स्टार नाम का क्रूज जहाज तूफान में फंसने के चंद मिनटों के भीतर ही डूब गया था। 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है जबकि 14 लोगों को जिंदा बचाया गया है। इनमें जहाज के कप्तान और मुख्य अभियंता भी शामिल हैं। ग्रीस को कर्ज देने वाले अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाता देशों के कर्ज संकट से निपटने के लिए नई योजना पर राजी हो गए हैं। यूरोपीय संघ, द यूरोपियन सेंट्रल बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बुधवार को ग्रीस सरकार के समक्ष इस योजना को प्रस्तुत करेंगे। अभी तक इसके बारे में अधिक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रस इसे स्वीकार करेंगे या नहीं। मंगलवार को उन्होंने अपनी अलग योजना पेश करते हुए कहा था कि वे खर्च में और कटौती स्वीकार नहीं करेंगे। ग्रीस को शुक्रवार तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को 30 करोड़ यूरो का कर्ज चुकाना है। यूरोपीय संसद के मुखिया मार्टिन स्कल्स का कहना है कि यूरोपीय संघ में रूस के राजदूत व्लादिमीर चीजोफ को संस्थान में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यूरोपीय संघ ने यह कदम रूस के 89 यूरोपीय नेताओं और अधिकारियों को रूस में प्रवेश करने की को प्रतिबंधित करने के जवाब में उठाया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा में नमस्कार भारत, आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं। मैं हूं विनीत खरे। फुटबॉल की संस्था फीफा के अध्यक्ष सेप प्लैटर ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है। ज्यूरिख में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने इस्तीफे की घोषणा की। ब्लैटर ने कहा कि उनके उत्तराधिकारी का चुनाव एक आपात बैठक में किया जाएगा। 6 दिन पहले ही अमरीकी जाँच एजेंसी FBI ने एक होटल पर छापा मारकर भ्रष्टाचार के आरोपों में फीफा के कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। 4 दिन पहले ही 79 वर्षीय स्विस नागरिक सेप प्लैटर को 5वीं बार फीफा का अध्यक्ष चुना गया था। थोड़ी देर में हम वॉशिंगटन चलेंगे बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय के पास, क्योंकि अमेरिका की मीडिया से खबर आ रही है कि FBI मामले की जांच कर रही है। लेकिन पहले इस इस्तीफे और उससे जुड़ी प्रतिक्रियाओं पर एक रिपोर्ट सुनते हैं दिलनवाज पाशा से।
स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक शहर में प्रेस को संबोधित करते हुए सेप ब्लैटर ने कहा है कि वह फीफा में सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस्तीफे का ऐलान करते हुए ब्लेटर ने कहा, जाहिर है मैं नए चुनावों में खड़ा नहीं होऊंगा और अब मैं चुनाव की बंदिशों से आजाद हूं। अब मैं महत्वाकांक्षी और अहम सुधारों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। अमरीकी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक सेप ब्लैटर भी अब एफबीआई की जांच के दायरे में हैं। जांच एजेंसी गिरफ्त में आए फीफा अधिकारियों से मिले सबूतों के आधार पर ब्लैटर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर सकती है। फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष ग्रेग डाइकी ने ब्लैटर के इस्तीफा देने के फैसले को फुटबॉल जगत के लिए अच्छी खबर बताया है। उन्होंने कहा,
आई थिंक इट्स ग्रेट न्यूज फॉर फुटबॉल, आई थिंक इट वाज इट्स लॉन्ग ओवरड्यू बट इट्स
मुझे लगता है कि यह फुटबॉल के लिए बहुत अच्छी खबर है। यह पहले ही हो जाना चाहिए था। इसका मतलब यह है कि अब हम किसी और को फीफा को संचालित करने के लिए ला सकेंगे। हम ये भी पता लगा सकेंगे कि इतने सालों में सारा पैसा कहाँ गया है और भविष्य में भी इसका हिसाब रख सकेंगे। अमेरिका में भ्रष्टाचार के आरोप में फीफा के 14 अधिकारियों पर मुकदमा चल रहा है। इस मुकदमे ने ही ब्लैटर की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। स्विट्जरलैंड पुलिस भी एक आपराधिक जांच कर रही है जिसमें 2018 और 2022 विश्व कपों की मेजबानी रूस और कतर को देने की प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जा रही है।
ये थे दिलनवाज पाशा। हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने बात की वरिष्ठ खेल पत्रकार नोवी कपाड़िया से और उनसे पूछा कि पद संभालने के 4 दिनों में ही सेप ब्लैटर का इस्तीफा दे देना आखिर क्या कारण हो सकता है।
कारण तो अभी खैर किसी को स्पष्ट नहीं मालूम है, लेकिन जो उम्मीद जैसे लग रही है कि जो ये भ्रष्टाचार के जो सारे जो बातें उठी थी तो ये भ्रष्टाचार की बात फैल गई है और अब शायद जो ये इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की महान इंटेलिजेंस एजेंसी पीछे लगे हुए थे उन्होंने कुछ संदेह भेजा हो कि भाई ये बात जो निकलती जा रही है हमारे पास ऐसे खबर आ गई है कि आप और अपने परिवार भी इन्वॉल्व है तो उसके कुछ घबराहट के माने भी उन्होंने छोड़ा हो और कुछ हो सकता है कि जो लोग ऑलरेडी एफबीआई ने वो एक्सट्राडाइट किया है तो उन्होंने भी कुछ बातें निकाली हो और ब्लैटर की विरोध बोले हो। असर तो बहुत बुरा है विश्व फुटबॉल के लिए क्योंकि 4 दिन पहले ही तो इलेक्ट हुए, अब वो छोड़ रहे हैं, अब नया अध्यक्ष आएगा उसी समय एक तरह के ग्रेसफुली अपना इस्तीफा दे के हट जाते हैं और कहते भैया मेरी आयु होगी मैं पेट्रन बनूंगा तो अच्छा रहता, उनका इमेज भी रहता है। अब तो सब लोग कहेंगे ब्लैटर भाग गया ना, भ्रष्टाचार के डर से भाग गया।
काफी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व थे तो आपको लगता है कि एक ईमानदार टीम चुनने में भी तो काफी वक्त लगेगा।
ईमानदार टीम तो बहुत ही कठिन होगा, वह तो पूरा बदलाव है, पूरी क्रांति हो। देखो इससे यही फायदा हो सकता है, IOC में भी हुआ था कि पूरी क्रांति हो। और देखो आदमी पे विश्वास नहीं कर सकते कभी भी, वो किसी की भी जिंदगी पलट हो सकती है, कोई भी टेम्पटेशन में आ सकता है। ये तो हम इस तरह के नियम बनने चलेंगे, कानून बनने पड़ेंगे कि ये चीजें हो ही नहीं सकती, तभी सुधार आएगा। आदमी बदलने से कुछ नहीं होगा। भाई ब्लैटर जब आया था तब कौन कह रहा था कि इस तरह, ब्लैटर की तो बड़ी तारीफ थी कि बहुत ही मेहनती सेक्रेटरी है और बहुत मतलब एक तरह का दिल वाला है, एशिया और अफ्रीकन देशों को पैसा दे रहा है। देखो उन्होंने वो बात तो सही की, इंडिया को भी कितना सुधार मिला है, कई अफ्रीकन देशों जहाँ ग्राउंड भी नहीं थे वहां मिले, लेकिन यही पैसा ने भ्रष्टाचार भी फैलाया। तो ब्लैटर के कोई जो इंटेंशन तो खराब नहीं थे, लेकिन अब ये चीज मॉनिटर नहीं हुई। कभी भी भारत में भी पूरा नहीं कह सकते कि भाई ये जो सारे पैसे आते हैं हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये जब तक सारे एक तरह का नए नियम और नए कानून नहीं आएंगे, फीफा एक आदमी से दूसरे आदमी तक बदलती रहेगी। फुटबॉल की इतना लोकप्रिय खेल के लिए नुकसान है और मुझे डर है कि स्पॉन्सर्स अब डरेंगे फुटबॉल से जुड़ने के लिए। जैसे अध्यक्ष चुने भी गए ना, जो अगले दिन उन्होंने बोला, मतलब एक एल्डर स्टेट्समैन की तरह बोलते कि चलो अब हम सब मिल के रहेंगे जो हो गई बात, वो उन्होंने तो फिर वो झगड़ा लेने का वो किया ना कि ये अमरीका को दुख लग रहा है कि कतर को विश्व कप मिला और उन्हें नहीं मिला, तो वो तुम युद्ध के रास्ते पे जाओगे। कुछ समय में पता ही लग जाएगा कि क्या नई नई चीजें आई है जिसके वजह ब्लैटर को ये इस्तीफा देना पड़ा।
तो आपको लगता है कि कतर और रूस को जो विश्व कप अलॉट हुआ है क्या उस पर भी खतरा बन रहेगा?
डर लग रहा है अब मुझे। अभी तक शनिचर तक मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये कुछ भी होए फीफा अपने निर्णय बदलती नहीं, क्योंकि फिर एक गलत संदेह जाता है कि भाई जो दबाव डालो और ये हटो। और क्या दुख की बात भी होगी कि ब्लैटर का इसमें भी आइडिया तो सही था, भाई नई जगह जा रही है भाई, पश्चिमी यूरोप ने तो बहुत दफा विश्व कप का मेजबानी की है, मैं तो शुरू से गिना सकता हूँ, इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, इंग्लैंड, जर्मनी, बाद में कितने सारे पश्चिमी यूरोप के देशों ने मेजबानी की है। तो अब इधर पूर्व यूरोप में भी जाने दो, कोई एशिया में सिर्फ जापान और कोरिया जो अमरीका के खैर बहुत डेवलप्ड देश भी है उसकी बात कोई डाउट नहीं है उसमें, तो एक और जगह भी जाते हैं फुटबॉल, तो अब मुझे भी डर लग रहा है।
ये थे खेल पत्रकार नोवी कपाड़िया। सीधे चलते हैं वाशिंगटन ब्रिजेश उपाध्याय के पास। ब्रिजेश, सबसे पहले ये जो मीडिया में खबरें आ रही हैं अमेरिका में कि एफबीआई मामले की जांच कर रही है, क्या जानकारी है इसके बारे में आपका?
देखिए विनीत, ये एबीसी न्यूज की खबर है जो उन्होंने सूत्रों के हवाले से ब्रेक की है, स्वतंत्र रूप से बीबीसी इसकी पुष्टि नहीं कर पा रही है। और अब से कुछ ही मिनट पहले रॉयटर्स ने भी सूत्रों के हवाले से ये खबर जारी की है, एक लाइन की खबर अभी आई है, लेकिन स्थानीय मीडिया में भी एबीसी का ही हवाला देकर ये खबर चल रही है। अमेरिका में उनके इस्तीफे पर प्रतिक्रिया जरूर कई जगहों से आई है। अमेरिकी फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील गुलाटी, जो भारतीय मूल के हैं, उन्होंने कहा है कि ये एक मौका है फीफा में सकारात्मक बदलाव का, और ये एक मौका है फीफा में ऐसे सुधारों का जो वास्तविक हों और जिनका कुछ मतलब हो। वहीं वर्ल्ड कप की प्रायोजक कंपनी कोका कोला ने भी बयान दिया है और कहा है कि फुटबॉल और फुटबॉल प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है, और उन्होंने उम्मीद जताई है कि फीफा उन सभी समस्याओं पर ध्यान दे देगी जिसका और जिससे उन सभी लोगों का विश्वास जीता जा सकेगा जो फुटबॉल को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं।
जी ब्रिजेश, अमरीका से एक और खबर ये है कि अमरीकी सेनेट ने खुफिया एजेंसियों के फोन डेटा इकट्ठा करने की क्षमताओं को सीमित करने के पक्ष में फैसला लिया है। 11 सितंबर 2011 को हुए हमले के बाद से अमेरिका में फोन डाटा इकट्ठा करने की नीति लागू थी, क्या जानकारी इस नए कानून के बारे में?
जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि जैसा कि आपने बताया 9/11 के हमले के बाद अमेरिका में एक कानून बना था, पेट्रियट्स एक्ट, जिसके तहत अमेरिकी नागरिकों के फोन रिकॉर्ड्स पर नजर रखी जाती थी। ये इस कानून के सेक्शन 215 के तहत होता था जो पिछले रविवार को लैप्स कर गया था क्योंकि सेनेट में उसे पारित नहीं किया जा सका। इसके पहले एक नया कानून पिछले महीने यूएस फ्रीडम एक्ट के नाम से निचले सदन में पारित हुआ था और आज सेनेट में उसी कानून को पारित कर दिया गया है, तो बस अब उस पर राष्ट्रपति ओबामा के हस्ताक्षर होने हैं। और इस कानून में पेट्रियट एक्ट के कई प्रावधान शामिल हैं लेकिन बंदिशों के साथ। तो अब तक अमेरिकी नागरिकों के टेलीफोन रिकॉर्ड, कितने कॉल्स कहाँ किए गए, किससे किए गए, यानी जिसे हम मेटा डेटा कहते हैं, उस पर सुरक्षा एजेंसियां नजर रखती थी और उसका विश्लेषण करती थी आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए। अब वो रिकॉर्ड जैसा कि आमतौर से होता है टेलीफोन कंपनियों के पास ही रहेंगी और सुरक्षा एजेंसियों को अगर उसकी जरूरत हो तो उसे उन्हें एक खास अदालत से अनुमति लेनी होगी। इसके दो और अहम प्रावधान है विनीत जो मैं बताना चाहूंगा, जो सीधा पेट्रियट्स एक्ट से लिए गए हैं और 2019 तक उन्हें बढ़ा दिया गया है। पहला है रोविंग वायर टैपिंग, यानी किसी ऐसे शख्स जिस पर कि चरमपंथी संगठन से ताल्लुक होने का शक है, उसके हर डिवाइस यानी फोन, नया फोन, कंप्यूटर, टैबलेट या एक ही, ये सब एक ही अदालती आदेश के तहत उन पर नजर रखी जा सकेगी। और दूसरा है लोन वुल्फ टैपिंग, यानी ये जब से आईसिस का मामला आया है उसके बाद इसकी जरूरत महसूस हो रही है कि अगर कोई व्यक्ति अकेले ही किसी कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है तो उसकी फोन टैपिंग की भी अनुमति होगी।
जी मैंने 11 सितंबर 2011 कह दिया था और आपने उसको ठीक किया, इसके लिए शुक्रिया। सबसे पहले ये हमारे श्रोताओं को बताएं कि इस कानून को पास करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी?
देखें, पेट्रियट्स एक्ट के तहत जिस तरह की जासूसी हो रही थी अमरीकी नागरिकों की, वो 2013 में एक तरह से सार्वजनिक हुआ जब एडवर्ड स्नोडन ने ये बातें लीक कर दी, ये आपको याद होगा। वैसे ये जॉर्ज बुश के समय में शुरू हुआ था लेकिन ओबामा जो उदारवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं उनके प्रशासन को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी क्योंकि उन्होंने इसे जारी रखने की अनुमति दे दी थी। तो उसके बाद राष्ट्रपति ओबामा ने इसमें सुधारों की घोषणा की और कांग्रेस से एक नया बिल लाने की भी गुजारिश की, तो ये बिल निचले सदन में आया और भारी बहुमत से वहां पास हुआ और सेनेट में इसे अब मुश्किलों का सामना करना पड़ा लेकिन आखिरकार वो पास हो गया है।
ये थे वाशिंगटन से ब्रिजेश उपाध्याय। ब्रिजेश, आपका बहुत शुक्रिया। और अब कुछ खबरें भारत से जुड़ी। भीषण गर्मी से परेशान लोगों के लिए एक बुरी खबर है। आशंका जताई जा रही है कि इस बार सामान्य से करीब 12% कम बारिश होगी। इसका सीधा असर आम आदमी और खासकर किसानों पर होगा। एक रिपोर्ट के साथ समीर आत्मज मिश्र।
पहले बेमौसम की बरसात ने किसानों की फसल बर्बाद की, फिर अब चिलचिलाती गर्मी ने देश भर में लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है और आगे भी मौसम के आसार ठीक नजर नहीं आ रहे हैं। मानसून से जुड़ी एक के बाद एक बुरी खबरें आ रही हैं। मंगलवार को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इस बार देश भर में बरसात सामान्य से करीब 12% कम होगी।
इस वर्ष मानसून के नॉर्मल से कम होने की संभावना है, जिसमें 93% प्लस माइनस 5% की हमने बात की थी। अब हमारी लेटेस्ट जो कैलकुलेशन के हिसाब से इस वर्ष मानसून के 88% प्लस माइनस 4% होने की संभावना है।
एक महीने पहले ही अनुमान लगाया गया था कि बारिश सामान्य से 7% कम होगी, लेकिन अब ये संशोधित आंकड़े सामने आए हैं। दिल्ली स्थित मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर बीपी यादव कहते हैं कि 1 जून से 30 सितंबर के बीच की बारिश का ये आंकड़ा है जिसकी संभावना जताई गई है।
आंकड़े में तो परिवर्तन होता रहता है। अप्रैल में जो कंडीशन थी उसके हिसाब से अप्रैल का फोरकास्ट था। अब ये जो लेटेस्ट कंडीशन है, जो ग्लोबल और रीजनल जारी कंडीशन है पैसिफिक ओशन में, एल इनो की इंडियन ओशन में, जो अभी जो हालात बने हुए हैं उसके अनुसार मानसून किस तरह का रहेगा उसका अनुमान है। ये सामान्य से 12% कम रहने का अनुमान लगा है, 88% होगा ऐसा बोला गया है।
ये पूरे सीजन के लिए है, 1 जून से 30 सितंबर तक चारों महीनों के रेनफॉल का आंकड़ा है ये। और चारों महीनों की बारिश तो एक जैसी होगी नहीं, वो तो अलग अलग होती रहेगी। कभी जून हो सकता है जून में कम ज्यादा हो, जुलाई में अलग हो, अगस्त में अलग होगी। तो ये पूरे सीजन का फोरकास्ट है ये।
डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना था कि मौसम के बदलते करवट और उससे होने वाले नुकसान और परेशानियों को लेकर सरकार चौकस है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने इस बारे में सभी संबंधित मंत्रियों को आवश्यक तैयारियां करने और कदम उठाने के निर्देश दिए हैं ताकि आम जनता को परेशानी न हो। जानकारों का कहना है कि ऐसे समय में जबकि देश भर में गर्मी से 2000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, ये खबर भविष्य की भी डरावनी तस्वीर ही पेश करती है।
ये रिपोर्ट थी समीर आत्मज मिश्र की। मौसम की मार से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को होगा, लेकिन यदि किसानों को पहले से ही पता चल जाए कि उन पर मौसम की मार पड़ने वाली है तो क्या इस नुकसान को कुछ कम किया जा सकता है? समीर आत्मज मिश्र ने यही सवाल रखा कृषि मामलों के जानकार देवेंद्र शर्मा के सामने।
देखिए, सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो तो किसानों पर पड़ेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं मीडिया में देख रहा हूँ वो सबसे ज्यादा उनको इंटरेस्ट है कि इन्फ्लेशन पे क्या होगा। तो ये अनफॉर्चुनेटली इन्फ्लेशन की उसमें हम लोग किसान का दर्द जो है या किसान का दुख जो है वो कहीं पीछे छोड़ देते हैं या उसको नज़रअंदाज कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा देखिए, सूखा पड़ता है, डिले मानसून होता है या बीच में कभी मानसून रुक जाता है। एक जो प्रोसेस है खरीफ के मौसम का, क्योंकि हमारे देश में सारी जो रेनफॉल होती है साल की वो 300 घंटे 3 महीने 4 महीना जब मानसून का है उसके अंत होती है। तो वो अगर वो थोड़ा सा भी बैलेंस इम्बैलेंस हो जाए उसका, तो उसका असर तो खेती पे पड़ना ही है। एक मार तो उसको उस सीजन पे पड़ जाती है जो भी फसल उसने लगाई है, लेकिन उसकी मार उसको आगे भी सहनी पड़ती है।
ये जानना चाहूंगा कि सरकार ऐसी स्थिति में कि वो नुकसान को कम कर दे, नुकसान कम होने पाए, वो क्या कर सकती है, उसको क्या करना चाहिए?
बहुत से स्टेप्स होते हैं, जैसे मैंने कहा कॉन्टिजेंसी प्लान है। आपको पहले देखना है कि भाई कौन से इलाकों में वो उसका सूखे का असर पड़ेगा, वहां पर उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है जो आपको चाहिए। आपको डीजल कहीं स्टॉक करना है, आपको ताकि पंप चल सके, एक तो ये काम है। आपको कहीं पर बिजली का प्रावधान करना है, वो भी एक काम है। आपके पास सीड की उपलब्धता हो, ताकि अगर एक सीड खराब हो जाए, सपोज करिए कि आपने पैडी की बुआई कर ली है, पैडी की बुआई धान की बुआई कर ली है और उसके एक महीने के बाद जाके सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती है, वो पैडी की जो फसल है जो आपने रुपाई की है वो खत्म हो जाती है। तो उसके बाद कॉन्टिजेंसी कौन सा बीज चाहिए वो भी सरकार के पास होना चाहिए और लोगों को एडवाइस भी करना चाहिए कि भाई हम कौन सा चीज आपको ये कहाँ से उपलब्ध होगा, कैसे उपलब्ध होगा। ये सब बातें जो है, कितना आपको फाइनेंशियल एलोकेशन करना है, ये सपोर्ट करना है, ये सब बातें जो है ये स्पेल आउट होनी चाहिए। इरिगेशन सिस्टम क्या होगा, कैसे आप उसको 100% एफिशिएंसी पे लेके आएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो सारा एक वैकल्पिक या सिस्टम जो स्ट्रक्चर जो है या सिस्टमेटिक जो डेवलपमेंट स्टेप्स होने चाहिए वो आपके पास है, लेकिन आप लोगों को विश्वास दिलाएं, लोगों को एंगेज करें, पार्टिसिपेट करवाएं, तब ये रास्ते में देश को कहीं विश्वास हो सकता है।
ये थे देवेंद्र शर्मा। झारखंड के हजारीबाग जिले में कोर्ट परिसर के भीतर पेशी के दौरान हुई फायरिंग और बम विस्फोट में एक कथित गैंगस्टर समेत तीन लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने घटनास्थल से एक AK-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड बरामद किए हैं। 16 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने संपर्क किया हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अखिलेश झा से।
दिन में करीब 10:30-11 के बीच में सुशील श्रीवास्तव जो कि एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है, हत्या के 2 मामले में उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ है, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। उनकी एक अन्य गिरोह है, उनके साथ पूर्व से ही दुश्मनी चली आ रही थी और उसमें यह आरोप लगता है कि भोला पांडे और किशोर पांडे की हत्या इन्होंने ही करवाई थी। उसके अतिरिक्त कई लोग जो कि मारे गए थे उस गैंगवार में, उनमें भी इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी। उसी गिरोह के एक अन्य सदस्य विकास तिवारी ने इन पर जानलेवा हमला किया, उसमें ये और इनके गिरोह के 2 अन्य सदस्य घटनाक्रम में मारे गए हैं। पुलिस वहां पर समुचित संख्या में थी, 18 सशस्त्र बल थे, आर्म्ड गार्ड थे, उसमें से 3-4 पुलिस कर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की। जवाबी कार्रवाई में जो एक्यूज था, जो अटैकर था, उसको भी गोली लगी और उसके पांव में गोली लगी है, वो राइफल छोड़ करके भागा है। उसको हम लोग पीछा कर किए लेकिन शायद भीड़ में वो निकल गया, क्योंकि काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है।
वहाँ पर कुछ खतरनाक हथियार भी मिले हैं, AK-47 जैसी राइफलें मिली हैं।
हम लोगों का जो AK-47 से उसने अटैक किया था, तो हम लोगों ने जो जवाबी कार्रवाई की थी उससे हम लोगों को वो AK-47 रिकवर हुआ, लेकिन जो एक्यूज्ड है उसको हम लोग गोली तो लगी लेकिन उसको पकड़ने में हम लोग सफल नहीं हुए।
जब इतना कुख्यात क्रिमिनल अदालत में पेश होने के लिए आया था और आप बता रहे हैं आपकी तरफ से तैयारी भी पूरी थी, फिर खामी कहाँ रह गई?
एक्यूज्ड पक्ष है और जो विक्टिम है, दोनों का कार्य क्षेत्र रामगढ़ का, रामगढ़ पतरातू और जो रामगढ़ क्षेत्र के अन्य क्षेत्र से है। हजारीबाग में कोई उनके आपराधिक इतिहास नहीं है, क्योंकि रामगढ़ नया जिला बना है, उसका प्रिजन एवं कोर्ट पर्सन दोनों हजारीबाग का ही है। तो इसकी मॉनिटरिंग मुख्य रूप से रामगढ़ के तरफ से होती थी कि कौन क्रिमिनल है, और चूंकि हम लोगों के यहाँ का कोई वो क्राइम किया नहीं था तो हम लोगों के स्तर से बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग नहीं होती थी। सिपाही लोगों ने, मैंने पूछा कि आपने उतना जल्दी क्यों नहीं रिएक्ट किया, तो देवर कॉशस की सर यदि हम लोग गोली चलाते तो काफी संख्या में लोग भी थे और लॉयर्स भी थे तो उनको भी गोली लग सकती थी, तो वो एक एक बड़ा कोलेट्रल डैमेज हो सकता था।
ये थे हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक अखिलेश झा। इंग्लैंड के उत्तर में स्थित शहर ब्रैडफोर्ड में बड़ी संख्या में मुसलमान रहते हैं। ब्रिटेन में इस्लामिक संस्थाओं की प्रतिनिधि इकाई ब्रैडफोर्ड में सिर्फ महिलाओं के लिए मस्जिद बनाए जाने का विरोध कर रही है। MINB नाम की इस संस्था का कहना है कि इससे मुस्लिम समुदाय में अलगाव की स्थिति पैदा होगी। महिलाओं के लिए अलग मस्जिद के निर्माण का विचार मुस्लिम विमेन काउंसिल ने उठाया था क्योंकि महिलाओं को इसकी जरूरत थी। BBC एशियन नेटवर्क की रिपोर्टर शबनम महमूद की रिपोर्ट सुना रहे हैं समीरात पंच मिश्र।
ब्रैडफोर्ड की मस्जिद में अजान की आवाज सुनाई दे रही है। ब्रिटेन की तमाम दूसरी मस्जिदों की तरह यहाँ भी नमाज पढ़ने के लिए आने वाले मर्द ही हैं। महिलाओं के लिए नमाज पढ़ने की सुविधा न होने के कारण यहाँ के संगठन ने महिलाओं के लिए विशेष मस्जिद बनाने की घोषणा की है। बानागोरा मुस्लिम वुमेन काउंसिल की प्रमुख हैं। वो कहती हैं, पानागोरा कह रही थी कि ब्रैडफोर्ड में पिछले एक साल से हम मस्जिदों के प्रावधानों की विस्तृत समीक्षा कर रहे हैं। हमने पाया कि मस्जिदें काफी हद तक पितृसत्तात्मक मॉडल का पालन करती हैं। मस्जिदों तक महिलाओं की पहुंच मुश्किल है। इनकी कमेटियों इत्यादि में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कमोबेश न के बराबर है। यह ख्याल अमरीका में महिलाओं के लिए विशेष मस्जिद शुरू होने के बाद आया, जिसमें महिलाएं इमाम के रूप में नमाज का नेतृत्व करती हैं। लेकिन परंपरागत मुस्लिम इससे सहमत नहीं है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
शेफील्ड स्थित गुलजारे हबीब मस्जिद के कारी सज्जाद अली शामी कहते हैं कि इससे मुस्लिम समाज एक होने की बजाय विभाजित होगा।
Having certain masajid based upon gender creates more division within a community. Females.
इमाम कारी सज्जाद कह रहे थे कि जेंडर के आधार पर मस्जिदें बनाने से मुस्लिम समुदाय में और विभाजन होगा। महिलाओं को मस्जिद जाने का अधिकार है, लेकिन उन्हें सलात यानी नमाज के लिए जेंडर के आधार पर विशेष मस्जिद और इमाम बनाने का अधिकार नहीं है। इस मुद्दे पर बात करने की जरूरत है। 600 मस्जिदों और इस्लामिक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले मॉस्क्यू एंड इमाम्स नेशनल एडवाइजरी बोर्ड यानी MINB भी कमोबेश यही राय रखता है। अल्लामा बेग कादरी MINB के वरिष्ठ मौलवी हैं। वो कहते हैं,
Throughout the 1400 plus years of Islamic history, we don't find women having separate mosques.
अल्लामा बेग कादरी कह रहे थे कि इस्लाम के 1400 सालों से अधिक लंबे इतिहास में हमें महिलाओं के लिए अलग मस्जिद या नमाज का नेतृत्व करने की बात नहीं मिलती। ऐसा कदम उठाना मुस्लिम रवायत के अनुकूल नहीं है। इससे मुस्लिम समुदाय में विवाद हो सकता है क्योंकि ये इतिहास सम्मत नहीं है। हालांकि कुछ मुस्लिम महिलाएं महिलाओं के लिए विशेष मस्जिद बनाने की पहल का समर्थन कर रही हैं। सबीना यास्मीन उन्हीं महिलाओं में से एक हैं।
It's nice that, you know, there are places where women can go to pray. It's being run.
सबीना यास्मीन कह रही हैं कि ये अच्छा है कि ऐसी मस्जिद हो जहां महिलाएं जाकर नमाज पढ़ सकती हैं और उसे महिलाएं चलाती हैं। हम सब जानते हैं कि महिलाएं ऐसा करने की काबिलियत रखती हैं। सबीना यास्मीन आमतौर पर घर पर ही नमाज पढ़ती हैं। वो ये भी मानती हैं कि मौजूदा मस्जिदों में महिलाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। वो कहती हैं,
What really should happen is women should be employed in these mosques. You know, they don't have to go and sit in board meetings with the men. You can do.
असल में होना ये चाहिए कि महिलाओं को इन मस्जिदों में रोजगार देना चाहिए। उन्हें मर्दों के साथ बैठने की जरूरत नहीं। जो इसे लेकर संवेदनशील हैं, वो टेलीफोन या इंटरनेट की मदद से परामर्श कर सकती हैं। हालांकि बहुत से मुस्लिम ये भी मानते हैं कि मस्जिद मर्दों की जगह है। इनमें यॉर्कशायर में नमाज पढ़ने वाले भी शामिल हैं। महिलाओं के लिए विशेष मस्जिद बनाने की योजना अभी अपने शुरुआती चरण में है। मुस्लिम वुमेन काउंसिल अभी इसके लिए संभावित स्थान और आर्थिक मदद की संभावनाएं तलाश रही है, लेकिन हमने जैसी बातें सुनी उससे साफ है कि उन्हें इस राह में काफी विरोध का सामना करना पड़ेगा।
रिपोर्ट पेश करे थे समीरा उत्मज मिश्र। अब जानते हैं आज के अखबार क्या कह रहे हैं। दिलनवाज पाशा स्टूडियो में है।
जी, आज के अखबारों में कल मौसम का जो पूर्वानुमान जारी किया गया है उससे ही जुड़ी खबरें हैं। ज़्यादातर अखबारों ने सूखे के डर को पहली खबर बनाया है। न भारत टाइम्स ने एक तस्वीर भी प्रकाशित की है जिसमें किसान सर पर हाथ रखे हुए और शीर्षक है सूखे का डर। इसी खबर पर दैनिक भास्कर लिखता है सरकार ने कहा भगवान करे कम बारिश का अनुमान इस बार गलत हो। और कल हमने बताया था दिल्ली सरकार बिहार के कुछ पुलिस अधिकारियों को लाना चाहती है ACB में, लेकिन इस पर अब एक बार फिर जंग बढ़ गई है दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल नजीब जंग में। हिंदुस्तान का शीर्षक है LG CM में ACB पर जंग। आजकल पिछले कुछ दिनों से केजरीवाल और नजीब जंग से जुड़ी खबरें जब भी आती हैं तकरार का मामला ज़्यादा होता है। और जनसत्ता की एक खबर का जिक्र करना चाहूँगा पहले पन्ने पर प्रकाशित, बादल अड़े अपनी तस्वीर न हटाने पर तो अनुदान पर छाए संकट के बादल। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के मुख्यमंत्री से कहा है कि वो 108 एम्बुलेंस सेवा जो है उससे अपनी तस्वीर हटा लें वरना उनको उनके राज्य को फंड नहीं दिया जाएगा। और एक खबर द इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर है जिसके मुताबिक विल रेस्पॉन्ड इवन इफ़ यू नॉक एट मिडनाइट प्राइम मिनिस्टर सेज टू मुस्लिम लीडर्स। यानी अगर रात में भी मुस्लिम मेरे घर का दस्तक देंगे मैं जवाब दूंगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी कुछ मुस्लिम नेताओं से। और आपको याद होगा हरियाणा की दो बहनों का मामला सामने आया था, एक वीडियो आया था काफ़ी चर्चा में रहा था। उससे जुड़ी एक खबर नई दुनिया के पहले पन्ने पर है, बहादुर बहनों की एक और फर्जी अश्लील पोस्ट वायरल। सोशल मीडिया फेसबुक और व्हाट्सएप पर इन लड़कियों की अश्लील तस्वीरें बनाकर जारी कर दी गई हैं। कुछ दिन पहले भी ऐसा हुआ था, इन्होंने धरना दिया था, अब एक बार फिर से ऐसा हुआ है, इनकी तस्वीरें आई हैं
जी।
और RBI ने रेपो रेट कम किया है जिसका असर जो है ऋण की दरों पर पड़ सकता है। ये खबर भी ज्यादातर अखबारों के पहले पन्ने पर है।
शुक्रिया दिलनवाज, और मैं फिर आपके पास आ रहा हूँ मुख्य समाचारों के लिए।
विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा के नव निर्वाचित अध्यक्ष से ब्लेटर ने कहा है कि वे अपना पद छोड़ देंगे। अमेरिकी सेनेट ने सुरक्षा एजेंसियों के आम नागरिकों का फोन डेटा जमा करने के कार्यक्रम को रोकने का फैसला लिया है। चीन में यांगजी नदी में डूबे जहाज में जिंदा फंसे हो सके यात्रियों की तलाश रात में भी जारी है। इस जहाज में 450 से ज्यादा यात्री सवार थे। ग्रीस को कर्ज देने वाले अंतर्राष्ट्रीय कर्जदाता देश के कर्ज संकट से निपटने के लिए नई योजना पर राजी हो गए हैं। यूरोपीय संसद के मुखिया मार्टिन स्कल्स का कहना है कि यूरोपीय संघ में रूस के राजदूत व्लादिमीर चिजोफ को संस्थान में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। वन्यजीव कार्यकर्ताओं ने तंजानिया में पिछले 5 सालों के दौरान हाथियों की आबादी में 69% की गिरावट को खतरनाक बताया है। बीबीसी समाचार।
इसी के साथ मुझे विनीत खरे को सभी सहयोगियों के साथ दें अनुमति। स्टूडियो संभाला था राजेश चौहान ने। श्रोताओं से हमारी अगली मुलाकात होगी ठीक 1 घंटे बाद विश्व भारती में।